आन्या बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। निहाल ने वजन फेंका और आन्या को अपने कंधे पर डालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। दोपहर का समय था, घर पर कोई नहीं था, इसलिए निहाल को कोई दिक्कत नहीं हुई। वो उसे लेकर नीचे पहुंचा और अपनी जीप में पीछे की सीट पर लिटाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद सिमरन वहां पहुंची। बिखरे सामान, टूटा हुआ वजन और फोन देखकर उसका दिल भय से भर उठा। उसने जल्दी से अन्वय को फोन किया। अन्वय का आखिरी लेक्चर चल रहा था, तभी उसका फोन बजा। सिमरन का नाम देखकर उसने पहले फोन नहीं उठाया, पर लगातार 3-4 कॉल के बाद उसने क्लास से बाहर जाकर कॉल रिसीव की। हल्के गुस्से से उसने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी भी क्या इमरजेंसी थी कि तुम थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकती थी? अगर फोन नहीं, अन्वय, आन्या नहीं मिल रही, सिमरन ने उसकी बात बीच में काटते हुए परेशानी भरे लहजे में कहा। अन्वय के भाव बदल गए। हैरानी से उसने कहा, क्या मतलब कि आन्या नहीं मिल रही? घर पर ही होगी वो। नहीं है वो घर पर, सुबह उसका फोन आया था, बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा कि लंच में मैं आऊंगी उससे मिलने, पर जब मैं यहां पहुंची तो आन्या नहीं थी। सब सामान फैला हुआ है, उसका फोन भी टूटा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है, देखकर लग रहा है जैसे कोई जबरदस्ती उसे लेकर गया है, सिमरन ने घबराहट में सारी बात बताई। अन्वय भी परेशान हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की। उसे गाड़ी में बेहोश पड़ी आन्या दिखी, साथ ही आगे बैठा एक लड़का भी, पर चेहरा नहीं देख पाया। वो अभी अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता था, कुछ ही सेकंड के लिए ध्यान लगा पाता था, इसलिए लड़के का चेहरा देख पाने से पहले ही उसका ध्यान टूट गया। पर शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिससे वो आन्या तक पहुंच सकता था। सिमरन, तुम वहीं रहो, चिंता मत करो, मैं आन्या को लेकर आऊंगा, इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अंदर जाकर क्लास खत्म बोलकर बैग लेकर बाहर निकल गया। अब उसके भाव एकदम सख्त थे और ये सारा गुस्सा उस आदमी के लिए था जो इस वक्त आन्या के साथ था। उसने फुल स्पीड में बाइक सड़कों पर दौड़ा दी। कुछ देर बाद आन्या को थोड़ा थोड़ा होश आया। उसने अपने सर को पकड़ते हुए आंखें खोली। खुद को गाड़ी में देखकर वो घबरा गई, पर जल्दी ही संभल गई। गाड़ी औरंगाबाद से बाहर जा रही थी। दोनों तरफ घने पेड़ और सुनसान रास्ते दिख रहे थे। आन्या झट से उठकर बैठी और आगे झुकते हुए निहाल के हाथ को हिलाते हुए बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। निहाल ने उसके हाथ को झटक दिया, पर आन्या फिर गाड़ी रोकने की कोशिश करने लगी। इसमें निहाल का ध्यान सामने से हटकर आन्या पर गया और आन्या ने उसकी बाँह पकड़कर स्टीयरिंग दूसरी तरफ घुमा दी। गाड़ी पेड़ से टकरा गई। झटके से आन्या आगे गिर गई और उसके सर में चोट लग गई। निहाल का सर स्टीयरिंग से टकरा गया। आन्या जल्दी ही संभली और गाड़ी से कूद गई, फिर नंगे पांव जंगल की ओर दौड़ पड़ी। कुछ पल बाद निहाल भी संभल गया और उसके पीछे दौड़ा, पर आन्या थोड़ी आगे निकल गई थी और बिना आसपास देखे भागती जा रही थी। अन्वय ने अपनी बाइक उस जगह से कुछ दूरी पर खड़ी कर दी जहां से कुछ देर पहले गाड़ी गुजरी थी, फिर अपनी आंखें बंद करके देखने लगा। उसे घना जंगल दिखा। वो परेशान होकर आसपास देखने लगा। दोनों तरफ घने जंगल ही थे। उसे समझ नहीं आया कि अब आगे कैसे जाए। अभी कुछ देर ही हुई थी कि अचानक उसके कानों में आन्या के चीखने की आवाज़ पड़ी। आन्या बिना कुछ देखे भागती जा रही थी कि अचानक उसके सामने बहुत सारे वैम्पायर आ खड़े हुए। वो डर गई। वे उसकी तरफ बढ़ने लगे तो उसने अपनी आंखें भींच ली और कानों को अपनी हथेली से बंद करते हुए पूरी जान लगाकर चीखी, अन्वय! उसकी आवाज सुनते ही अन्वय हवा की रफ्तार से आवाज की दिशा में दौड़ा। वैम्पायर जैसे ही आन्या के पास पहुंचे, अचानक एक तेज हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरा, जिससे सब स्तब्ध रह गए। अगले ही पल आन्या के इर्द गिर्द किसी की बाहों का घेरा बन गया। उस जाने पहचाने स्पर्श को महसूस करते ही आन्या ने झटके से अपनी आंखें खोली। नजरों के सामने अन्वय का गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर आन्या एकटक उसे देखती ही रह गई। अन्वय उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही तूफान की तरह घूमते हुए दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया और आन्या को छोड़कर उन सबकी तरफ मुड़ गया। आन्या की तरफ अब उसकी पीठ थी। इतने वैम्पायरों को देखकर अन्वय की आंखें गुस्से से नीली हो गईं, पर आन्या ये नहीं देख सकी। अन्वय आन्या के सामने खड़ा था। वैम्पायरों ने उस पर अटैक करना चाहा, पर पलक झपकते ही अन्वय ने अपना रूप बदल दिया। अब उनके सामने एक खूंखार वैम्पायर खड़ा था। अन्वय आगे बढ़ा और उन्हें चीरना फाड़ना शुरू कर दिया। एक और साया उसकी मदद के लिए आ गया और दोनों मिलकर उन सभी वैम्पायरों को खत्म करने लगे। अन्वय ने किसी की गर्दन उखाड़ दी, किसी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से चीर डाला, तो कुछ के गर्दन पर अपने दांत कड़ाकर उनका सारा खून चूसकर उन्हें राख में बदल दिया। हर तरफ खून ही खून था और उनकी लाशें थीं जो अगले ही पल धुएं में बदल जा रही थीं। आन्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अन्वय एक इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर होगा। आन्या आंखें फाड़े और मुंह खोले उस दर्दनाक, दिल दहला देने वाले नजारे को देख रही थी। उसकी निगाहें अन्वय पर टिकी हुई थीं, जो इस वक्त भयानक और डरावना लग रहा था। मुंह और जिस्म पर खून लगा हुआ था। देखते ही देखते सभी वैम्पायर मारे गए तो वो साया भी वहां से गायब हो गया। कुछ दूरी पर पेड़ के पीछे खड़े निहाल ने यह नजारा देखा तो उसकी आंखें गुस्से से धधक उठी।